సకల గుణ నిధానం వానరాణామధీశం రఘుపతి ప్రియ భక్తం వాత జాతం నమామి రామం రామానుజం సీతాం భరతం భరతానుజం సుగ్రీవం వాయుసూనుం చ ప్రణమామి పునః పునః. సుగ్రీవ్ కో భగవాన్ నే దుబారా యుద్ధ కర్నే కే లియే భేజా. సుగ్రీవ్ నే భగవాన్ సే కహా, మహారాజ్ ఇతని పిటాయి క్యో కరవాయి కి భాయి మే భ్రమ్మే పడ్ గయా, తుమ్ దోనో ఏక్ జైసే తే తో మే భ్రమ్మే పడ్ గయా. గోస్వామిజీ మహారాజ్ కహతే హై కి భగవాన్ మే కభీ భ్రమ హోతా హీ నహీ, ఔర్ యే భ్రమ్మే పడ్నే కి బాత్ క్యా హై. అసల్ మే సుగ్రీవ్ నే భగవాన్ కి జో పరీక్షా లీ, యే పరీక్షా లేనే మే జహాం కమీ కా ఎహసాస్ హోతా హై వహాం పరీక్షా లీ జాతీ. కుచ్ కమీ కా भीतर में भाव होता है ना, तब परीक्षा का भाव पैदा होता है. तो सुग्रीव के मन में भगवान के बल पर पूर्ण विश्वास नहीं था, इसलिए सुग्रीव की पिटाई हुई. लेकिन जब भगवान ने उसका स्पर्श किया और एक साथ उसका सारा दर्द दूर हो गया और शरीर वज्र जैसा हो गया, बड़ा बल मिल गया, तो ये भी विश्वास हो गया कि ये काम हो सकता है. और फिर भगवान ने माला पहनाई और सुग्रीव को भेजा. सुग्रीव के और बाली की खूब लड़ाई होती रही और भगवान एक वृक्ष की ओट में खड़े खड़े ये सब देख रहे थे. लेकिन यहां सुग्रीव भीतर से मन से भगवान से जुड़ा हुआ, ए अब भगवान इसके बाण मारेंगे, अब भगवान बाण मारेंगे, अब भगवान बाण मारेंगे. पहले सुग्रीव को अपने ऊपर ज्यादा बल का भरोसा था, अब जो है भगवान पर ज्यादा भरोसा हुआ. इसलिए बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भय मानी. सुग्रीव हर प्रकार से छल बल करके अपने मन में हार गया कि अब मेरे से तो पार पड़ेगी नहीं, अब तो भगवान के बाण से ही पार पड़ेगी. पूर्ण रूप से वो अंदर से टूट गया. तब भगवान ने बाली का निशाना करके ऐसा बाण मारा, उसके हृदय में बाण लगा. हृदय में बाण कब लगता है? सामने होते हैं तब. तो भगवान सामने आए भी नहीं भी आए, खुद तो छिप गए. बाण उन्होंने वृक्ष के पीछे बाण ऐसा लगाया, सीधा छाती में लगा और वो बाण के लगते ही छटपटाया, छटपटा करके गिर गया. भगवान उसके पास में गए, अपने सामने भगवान को देखा. अब उस दर्द, एक तरफ दर्द है एक तरफ भगवान है, शरीर में कितना दर्द है. लेकिन आप विचार कीजिए, बाली ने जरा सा भी नहीं कहा कि मैं बड़ा कर्रा रहा हूं, बड़ा दर्द में हूं, कुछ नहीं कहा. भगवान की तरफ देखता रहा. श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चिताई चरण चित दीना, सुफल सुफल जन्म माना प्रभु. मेरा जन्म सफल, अरे जन्म नहीं तेरा मरण सफल हो रहा है. क्या नाना, इतने जीवन भर के मेरे पाप थे, सब पाप तो खत्म हो गए और इनके दर्शन हो गए, निहाल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया. क्या भगवान की श्यामल मूर्ति है और ये जटा धारण किए हुए भगवान, मुकुट धारण किए हुए तो सबको दर्शन देंगे. ये जटा धारण किए हुए भगवान के दर्शन बार बार थोड़े ही होते हैं, खूब बढ़िया बड़े प्रेम से दर्शन किए और मन के अंदर बड़ा प्रेम है. ऊपर से कठोर बोलता है. ऊपर से कठोर क्यों बोलता है? भगवान की बात सुनने के लिए. भगवान मेरे पाप गिना देवेंगे ना, तो मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, मन में तो वो बड़ा प्रेम रख रहा है, ऊपर से कठोर बोलता है। राम जी की ओर देखते थे, वाह वाह, हमने तो सुना था कि आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं। जब धर्म की रक्षा करनी होती है तब आप अवतार लेते हो, और मेरे आपने बाण मारा, ये कौन से धर्म की रक्षा की आपने, ये कौन से मर्यादा की रक्षा की, मर्यादा पुरुषोत्तम हो आप। मेरी और सुग्रीव की आपस की लड़ाई थी, उस लड़ाई में आपके साथ तो हमारा कोई बैर था ही नहीं, आपने सुग्रीव से मित्रता कर ली और मेरे साथ आपने बैर भाव रख लिया। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोई मारा। देखो कितनी बढ़िया, हे नाथ हे स्वामी, दास्य भाव से बोल रहे हैं हमारे महाराज बली जी, बाली जी, कितनी बढ़िया बात। मेरे में क्या कमी थी, सुग्रीव के साथ आपने जाकर के मित्रता की, सीता के लिए की ना। तो ये आप राजनीति तो आप जानते ही होंगे ना, राजा लोग होते हैं सब जानते हैं कि किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, कमजोर आदमी के साथ या सबल के साथ। आप जानते नहीं मैं किष्किंधा का राजा हूं, मेरे अधीन कितने बंदर हैं और मैं स्वयं कितना बलशाली हूं। रावण तो मेरे सामने मेरे नाम से कांपता है, उसको तो मैंने काख में रखा है, और आप मुझे इस प्रकार छिप करके मारते हो और सुग्रीव के पक्ष में होकर के मारते हो, क्या कारण है, कोई दोष तो बताओ आप मेरा। भगवान बोले, अच्छा कोई एक गलती है क्या तेरी, अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समये चारी। एक आदमी ने कहा कि इसमें तो तीन बात बताई है, चार कैसे बताई, अनुज वधु छोटे भाई की स्त्री और भगिनी और सुत नारी माने अपने बेटे की स्त्री, पुत्र वधु अपनी बहन और अपने अनुज वधु, यहाँ बहन का अर्थ माजाई बहन का अर्थ नहीं माना है, यहाँ रिश्ते में थोड़ी दूर रिश्ते में वो जो बहन होती उस पर है। तो अनुज वधु भगिनी सुत नारी ये तीन ही तो नाम, ये तीनों कन्या के बराबर होते हैं। तो कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है, अनुज वधु भगिनी भगिनी और सुत नारी और कन्या ये चार बराबर दृष्टि से देखे जाने के होते हैं, इसलिए चार का अन्वय यूं लगेगा, सुनुसठ कन्या समय चारी। देख बाली, तेरा सुग्रीव है ना छोटा भाई है, और उसके छोटे भाई की स्त्री पर तेरी दृष्टि बड़ी खराब है, इसलिए तुझे मारने में तो हमको कोई पाप दिखाई नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ, और ये पाप भी हमको इतना बड़ा पाप नहीं मालूम दिया। सबसे बड़ा पाप क्या था, तुझे इतना अभिमान, इतना अभिमान, मूड तो अतिशय अभिमाना। अरे छोटा मोटा अभिमान हो कि मैं राजा हूं तो कोई बात नहीं, होता है बेचारे, प्रभुता पाई काई मद नाई, धन हो गया अभिमान हो गया कोई बात नहीं, पर ध्यान देना ये अपने काम की चीज है। अतिशय अभिमाना, अतिशय अभिमाना का अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारी स्त्री ने तुमको मेरे भक्ति करने के लिए कहा था, मेरे से प्रेम करने के लिए कहा था और मेरे चरणों में चित लगाने के लिए कहा था, वो तुमने सुना ही नहीं, ये अतिशय अभिमान है। भगवान की तरफ ये जीव नहीं चलता है, ये अतिशय अभिमान है, अतिशय अभिमाना। मदांध पदांध हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरे को ही भूल गए तुम, अतिशय अभिमाना। नारी सिखावन करसी न काना, तुम्हारे स्त्री ने कितनी बढ़िया बात सिखाई तुम मानी नहीं, और फिर तेरा एक अधम अभिमान है, अधम अभिमान। अधम अभिमान क्या है कि मेरी भुजा पर आश्रित रहने वाले सुग्रीव को तू मारना चाहता है, ये अधम अभिमान है। पहले तो सुग्रीव को मारना चाहता था, वो तेरा अभिमान था, अब तुझे पता चल गया कि मैं सुग्रीव का रक्षक हूँ तो तुझे युद्ध करना ही नहीं चाहिए था। तो अरे सुग्रीव ऐसा अपने भी मित्रता कर लो, तू भी मेरे से मित्रता कर लेता, तू भी मेरी शरण में आ जाता, लेकिन तू अधम अभिमानी, अधम अभिमानी कि सुग्रीव को मेरी शरण में आते देखकर उसके पक्ष से मैं युद्ध कर रहा हूँ इतना जान करके भी तो उस सुग्रीव को मारने के लिए आया, तो मेरे बल को चुनौती दे रहा है तू, तो ये अधम अभिमान है। तो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है, ये अधम अभिमान है तुम्हारा, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। बड़ी सरलता से बाली बोलता है, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोर। खूब मुस्कुराते हुए आनंद में झूमते हुए बड़ा बड़ा ही मस्ती से बोल रहा है, महाराज आप मुझे पापी बताते हो, अधम अभिमानी बताते हो, आपके मुझे दर्शन हो रहे, अंतिम समय में दर्शन हो रहे हैं महाराज, मेरे प्राण तो निकलने वाले हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं, अंतिम अवस्था में आपका जो ध्यान कर लेता है, अपनी चित्त वृत्ति से जो आपका स्मरण कर लेता है महाराज, उसी का भी पाप नहीं रहता। आप तो कृपा करके मेरे पास आए हो, कृपा करके मेरे बाण लगाए हो, और अभी भी आप मुझे पापी कहते हो। मैंने तो कुछ भी पाप किया था, जो कुछ भी मैंने किया था कोई बात नहीं, लेकिन आपका जब ये बाण मेरे पास आकर मेरे छाती से चिपक गया है और मेरे पाप से आप व्यथित हो गए हो और उस व्यथा से आपने मेरे बाण मार दिया, अभी भी मैं पापी हूं क्या? अभी मैं पापी हूं क्या? मेरी चतुराई तो चलेगी नहीं महाराज, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। क्या बाली में देखो, लोग कहते हैं कि भाई भाव बदलने में समय लगता है, भाव बदले समय लगता है, बाली में बताओ क्या समय लगा? भगवान कह रहे हैं तू पापी है, वो कहते हैं महाराज आपके दर्शन हो गए मैं पापी कैसे रहा? तो भगवान को अपनी वाणी वापिस लेनी पड़ी। अरे बात तो तुम्हारी सही है, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीश पर से वो निज पानी, अपने हाथ से उसका सिर सहलाना। रे बाली भगवान सब पाप आप सब भूल गए, गिना गिना के पाप बता रहे थे, अतिशय अभिमानी, अतिशय अभिमाना, अधम अभिमानी और इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जाए, क्या क्या भगवान ने लिस्ट रखी। लेकिन जो ही वो कहा महाराज आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास हूँ महाराज, दास महाराज। कितने कोमल है भगवान। महापुरुष कहते हैं कि भगवान की इस कोमलता का हम लोगों को जबरदस्ती प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे कहीं किसी प्रकार की छूट मिलती है तो लोग लौकिक कामों में छूट लेने का लाभ लेते हैं, इसी प्रकार से भगवान की कोमलता में जो छूट मिलती है हमको उस कोमलता को लूट करके छूट को प्राप्त करना चाहिए। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीश पर से वो निज पानी। और भगवान ने क्या कहा, अचल करो तनु राखरे, तेरे प्राण अचल कर दो, कभी न मरे। अरे महाराज अभी तो इतने पाप बता रहे हो, इतने में आप इसको इसके प्राण अचल करने जा रहे हो, इसका प्राण अचल करने जा रहे हो महाराज। यदि प्राण आपको रखना था तो जटायु का रखते, जटायु से आप पूरी बात सुने ही नहीं, उसे वो जटायु मर गया, उसको कहते हैं कि ले भाई तेरे प्राण रखे भगवान के, उसको तो मैंने पिताजी के पास भेजा है समाचार देने के लिए, मैंने बैकुंठ भेजा है उसको, मैंने परम धाम भेजा है, तो इसको इसको भाई इसको इसको प्राणों की बात क्यों बोलते हैं? प्राणों की बात इसलिए बोलते हैं कि तेरे जीवन में भजन साधन तो कुछ हुआ नहीं, कभी तूने भजन किया नहीं, केवल राज्य किया, लूटपाट मचाई और रहा सा अपने भाई के साथ बैर किया, भाई की स्त्री को घर में रख लिया, इसलिए तेरे प्राण कई दिन तक रखूं चाहे तू मेरा भजन साधन कर सके। बाली ने कहा, महाराज भजन साधन का महत्व है कि आपका महत्व है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, हमने देखा कि कितने कितने जन्म ऋषि मुनि लगा देते हैं, लेकिन अंतिम समय में आपका नाम उनसे बोला नहीं जाता है और आप मेरे सामने खड़े हो, बताओ। सेठ जी इसका अर्थ और ही करते थे। सेठ जी ये नहीं कहते थे कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कई, जो श्रेष्ठ मुनि लोग हैं जन्म जन्म तक यत्न करते हैं और अंत में उनसे राम नहीं कहा जाता, ऐसा अर्थ नहीं करते थे। सेठ जी कहते हैं सेठ जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि यत्न करते रहते हैं और अंतिम समय में राम 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 करते रहते हैं, फिर आते नहीं है। तो क्या साहब जन्म जन्म क्या हुआ कि वो बार बार भगवान से इसीलिए जन्म लेते हैं कि महाराज और जन्म दे, आपके नाम लेते लेते अभी तृप्ति नहीं हुई, और हमको भेजो और हमको भेजो। ऐसे ऐसे संत हुए जब भगवान के नाम में आनंद आने लगा तो कहने, हे भगवान मुझे दोबारा मनुष्य शरीर भेजो, हे भगवान ऐसी जगह भेजो जहां फिर नाम लिया जाए, फिर नाम लिया जाए। क्यों भाई, मैं मेरे लिए ना, ना ना वो राम नाम का एक आनंद ऐसा है आनंद। तो राम नाम का जब आनंद उनको आने लगा तो उन्होंने जन्म जन्म की जो है इच्छा की, यत्न किया, प्रयत्न किया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कई आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, महाराज आप ही के नाम के बल के ऊपर भगवान शंकर काशी में विराजमान है, सबको परम गति देते हैं। काशी में कान ऊंचा रहता है सबका, मरने वाले का कान ऊंचा रहता है, ये देखी हुई बात है। जो काशी में मरता है उसका कान यूं ऊंचा रहता है। एक मुर्दे को ले जा रहे थे रिक्शे में, तो थोड़ी भीड़ सी थी, वहां बताया देखो ये कान ऊंचे हैं, देखा ये कान ऊंचा है उसका। काशी में मरने वाले का कान ऊंचा रहता है। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबई सम गति अविनाशी। वो आप मेरे सामने खड़े हो महाराज, ऐसा योग फिर कभी बन सकता है क्या? आपकी और हमारी साक्षात बातचीत हो रही है, बाण लगे, बाण वाण की पीड़ा नहीं है मुझे, मुझे बाण की पीड़ा नहीं है। मेरा तो आपका जो प्रेम मुझे मिला है, इस प्रेम के अंदर मैं तो महाराज सोच रहा हूँ कि ऐसी विधि आगे बनने वाली नहीं है। महाराज आपके तो दर्शन ही बड़े मुश्किल, वो आप मेरे सामने खड़े हो महाराज। अभी तक रामावतार में किसी के सामने भी मरते समय में आपने दर्शन नहीं दिए, एक मेरे सामने ही दिए, बताओ किसको? पिताजी को नहीं दिए, बाप को, दशरथ जी को दर्शन नहीं दिए मरते मरते, जटायु को दिए दर्शन, लेकिन मेरे जैसे बाण मार करके और जिस प्रकार से मेरे से बात कर रहे हैं ऐसा तो जटायु के साथ भी नहीं हुआ महाराज। सो नयन गोचर जास गुण नित नीति कई श्रुति गावही। श्रुतियां तो कहती है कि ना भाई ना, ये भगवान नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और आप महाराज मेरे सामने आ गए। और कई कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो अपने प्राणायाम के द्वारा अपने वायु को जीतते हैं और इंद्रियों को रसहीन करते हैं। इंद्रियों में जो आसक्ति रहती है विषयों के प्रति, इंद्रियों से ही आसक्ति हटा लेते हैं। देखो अपने अंदर आसक्ति होती है वो इंद्रियों में आती है, इंद्रियों से विषयों में आती है। अपने अंदर आसक्ति वो मन में आती, बुद्धि में आती, इंद्रियों में आती, पदार्थों में आती। पांच जगह है ये आसक्ति के रहने के। खुद में, खुद का अर्थ है अहंकार, जड़ चेतन का संबंध, वहां से आसक्ति आती है बुद्धि में, बुद्धि से आती है मन में, मन से आती इंद्रियों में, इंद्रियों के बाद आती विषयों में। अब हम लोग क्या करते हैं कि विषयों से आसक्ति हटाने का प्रयास करते हैं, विषयों में प्रेम, अरे ये यहां से आ रहा है, यहां से। जैसे कुएं का पानी वो खेड़ी में आए और खेड़ी से वो पानी नाले में जाए और नाले में जाकर के और फिर वो क्यारी में जाए, तो हम बस वो क्यारी में पानी नहीं आए, क्यारी में पानी नहीं आए। अरे क्यारी में पानी को रोकना है तो कुएं के अंदर से पानी आ रहा है उसको वहीं से रोक दो ना। तो कुएं के पानी के प्रवाह को नहीं रोकते, खेड़ी में से पानी आ रहा है वो प्रवाह नहीं रोकते। अब साहब ये विषयों में हमारी आसक्ति, विषय आसक्ति मिटनी, इधर इन चार जगह आसक्ति पड़ी है, इधर हम ध्यान ही नहीं देते। इसलिए हमको हमारे अंदर जो अहम भाव है उसमें जो विषयों का आकर्षण है वहां से आकर्षण हटना चाहिए। जिति पवन मन गो निरस करी, गो निरस करी, गो माने इंद्रियों को आसक्ति से रहित करके, और के जो ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं महाराज, वो इस अति अभिमानी को आपको, हमको बिना प्रयत्न ही आपका दर्शन हो गया। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहो राख शरीर रही। ऐसा अभिमानी पुरुष, अतिशय अभिमानी, अधम अभिमानी, उसको कह रहे तेरा शरीर रखो महाराज। अब महाराज ऐसा कौन आदमी होगा जो कल्प वृक्ष को तो छोड़ेगा और बबूल के कांटे लाकर अपने चारों तरफ कांटे की बाढ़ करेगा। सुरतरु बारी कर ही बबू रही, भाई बबूल के कांटे लाओ बाढ़ करेंगे यहाँ। कल्प वृक्ष को काटो, कल्प वृक्ष को काटो और बबूल की बाढ़ करो, ऐसा तो महामूर्ख आदमी होगा हमारा। आपको छोड़ू और प्राणों को अचल करूं, अचल तो आप है महाराज, आपको हृदय में बैठा हूं ना। बस महाराज अब तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। क्या? जय जोनी जन्म कर्म बसत है राम पद अनुराग। मुझे मेरे पापों से आप किसी भी योनि में भेजो पर आपके चरणों में मेरा अनुराग होना चाहिए। भगवान कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन संसार में तो कहीं तुम्हारा प्रेम होगा ना, स्त्री में प्रेम होगा, बेटे में प्रेम होगा, कि राज्य में प्रेम होगा, कि धन में प्रेम होगा, कहीं तो प्रेम होगा ना। हाँ महाराज, और तो मेरा प्रेम कहीं नहीं, एक इस बेटे में जरूर प्रेम है, अंगद में प्रेम है। यह तनय मम मन, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। इसलिए भाई मृत्यु से पहले पहले, बाली के इस मृत्यु से हमको ये सीखना चाहिए कि मृत्यु से पहले पहले अपनी सब ममता हटा ले, कि ममता नहीं हटती तो भगवान के अर्पण कर दे, कि महाराज ये मेरा बेटा अंगद है, ये मैं आपको अर्पित करता हूँ, ये विनय में भी मेरे समान है, बल में भी मेरे समान है, सब चीजों में मेरे समान है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए और आप इसको अपना दास बनाइए। ये यदि कुछ करे गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, गई बाह, आप इसको बाह पकड़ करके खींच करके जबरदस्ती भी करो तो कर लो आप, ये मैंने आपको सुपुर्द कर दिया। देखो इसमें एक बात है कि बाली को जब उसकी स्त्री ने समझाया तो ये राम जी से मित्रता करने क्यों नहीं गया। मित्रता करने इसलिए नहीं गया कि बाली ने विचार किया कि यदि सुग्रीव और हम दोनों ही हो जाएंगे, भगवान के भक्त हो जाएंगे, तो सुग्रीव की भक्ति में कमी आ जाएगी। अब और सुग्रीव को भगवान ने स्वीकार किया है क्योंकि अनाथ नाथ है भगवान, अशरण शरण है, वो भय भंजक है, भयों को दूर करने वाले हैं। तो मैं यदि उनकी शरण में चला जाता हूँ तो संसार में एक ही बात रहेगी कि जो आदमी जिस अवस्था में है उस अवस्था में भगवान का नहीं होकर अवस्था को बदलनी पड़ेगी। सुग्रीव ने कोई अवस्था नहीं बदली है, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में भगवान के शरण हुआ। और मैं यदि जहां शरण में जाऊंगा तो मुझे तो राज्य वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा, तो जिन राजाओं के पास राज्य वगैरह है वो भगवान की शरण में कैसे जाएंगे। इसलिए उसने देखा कि मैं इसी हिसाब में रहता रहता जल्दी मेरा कल्याण हो, तो जल्दी तो कल्याण ऐसे ही होगा कि मैं सुग्रीव के साथ युद्ध करूं और भगवान की बात भी मैं सफल करूं कि एक ही बाण से मैं मारूंगा। तो अब जाकर के शरण में होकर के, और ये बात भगवान की हमको किसी प्रकार से टालनी नहीं है, आते हैं भगवान की बात भी रखनी है और मेरा मोक्ष भी मुझे करना है। अतएव बाली ने अलग से जाकर शरणागति नहीं ली, मन से वो भगवान के शरण हो गए। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तनु त्याग। कोई जोर नहीं आया बाली को, जैसे कोई हाथी है, उसके कोई हाथी के ऊपर माड़ा है, माड़ा यदि गिर गई तो हाथी की कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति के प्राण जिस समय निकलते हैं उसको कोई कष्ट नहीं होता। अच्छे अच्छे भक्तों की बात सुनी है, प्राण निकलते हैं उसे मुस्कुराते हैं, ऐसे ऐसे बातें आती हैं, मुस्कुराते हैं। और जो भगवान की भक्ति की तरफ नहीं चलते उनका मुख डरावना हो जाता है, डरावना। सेठ जी की आंख खुली थी, आधी आंख खुली, देख करके कोई कह नहीं सकता था कि शरीर चला गया है, ऐसा सुना। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालकीन तन क्या। बाली को भगवान ने अपना धाम भेजा, राम बाली निज धाम पठावा। उसने तो कहा कि महाराज मुझे जन्म जन्म के ना मेरे, तूने खुद नहीं कहा कि अंतराम कहीं आवत नहीं, तो फिर भगवान ने उसको अपने धाम में भेजा। तारा ने आकर बड़ा विलाप किया। अब विलाप किया तो भगवान ने दो चौपाई कही, दो चौपाई पूरा ज्ञान दे दिया उसमें, क्या छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। रे तारे रोती क्यों हो भाई, ये शरीर तो पांच चीजों से बना हुआ है, वो तो इसमें है ही, और जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है, और ये पांच शरीर वाला, पांच तत्वों वाला ये शरीर है, इस पांच तत्व इसमें है ही, और आत्मा मरती नहीं, अब बता तू रोती क्यों है। जीव नित्य कही लगी तुम रोवा, आत्मा नित्य है और ये शरीर जिन पांच चीजों से बना ये तो अधम है, ये तो मरा हुआ पहले से ही मर रहा है, अब बता रोने का कारण क्या है। तो उपजा ज्ञान। देखो यही बात है, एक तो शरीर की अनित्यता समझ लें या जीवात्मा की नित्यता समझ लें, अपने स्वरूप की नित्यता समझ लें, दो में से एक बात भी समझ लेंगे तो फिर आगे समझने की जरूरत ही नहीं, सब बात पूरी हो गई। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने से परम भक्ति वर मांगी, कि महाराज मुझे तो आप भक्ति दीजिए। सुग्रीव को आज्ञा दी, बाली का अंतिम संस्कार हुआ और फिर राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को भेजा, बाली का सुग्रीव का राज तिलक कर दिया गया, और राज तिलक करने के बाद में वो फिर भगवान के पास आया। भगवान ने कहा कि देखो भाई अभी तो वर्षा ऋतु आ रही है, वर्षा ऋतु में तो कहीं जाए आए नहीं करते तुम लोग, जो है वर्षा ऋतु के बाद में हमारे काम के लिए तुम तैयार रहना हो, और तुम सुग्रीव को जो है राजगद्दी दे देना, राव युवराज पद दे देना, सुग्रीव अंगद सहित, अंगद को सुग्रीव को क्या देगा, अंगद तो राजा और तुम जो है सुग्रीव अंगद को युवराज बना देना, और भी सब प्रकार से बहु प्रकार नृप नीति सिखाई, राजा की नीति सिखाई कि देख राजा की नीति क्या है, कि जो पिछले राजा के जो प्रेमी लोग थे उनको कभी अपना दुश्मन मत मानना, कि ये तो बाली के लोग थे, बाली के मंत्री थे, बाली के हाँ में हाँ मिलाते थे, अब ये मेरे आदमी नहीं इनको हटाओ, ऐसा मत मानना। राजनीति तो यही कहती है कि जिस आदमी में जो श्रेष्ठता होती है उस श्रेष्ठता को लेकर के अपने को उस श्रेष्ठता का लाभ लेना चाहिए, ये राजनीति बोलती है। इस प्रकार से और भी कई प्रकार से उनको बातें बताई, और ये भी कहा कि देखो और जो है तुम्हारे जो मित्र हैं वो मित्र, तुम्हारे मित्रता सदा बढ़ती रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। राम जी महाराज उपदेश देकर के और प्रवर्षण पर्वत पर आ गए। इधर प्रवर्षण पर्वत पर देवताओं ने पहले से ही खूब अच्छी गुफा वगैरह बना रखी थी। भगवान जो ही वहां किष्कंधा के पास प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे, ये प्रवर्षण पर्वत क्या है, ये रामावतार में भी आता है। प्रवर्षण पर्वत ऐसा है जिस पर हरदम बरसात होती रहती है, प्रवर्षण है वहाँ। तो देवता लोग हैं, उन्होंने भगवान के लिए वहाँ जो है गुफा बनाई। कंदमूल फल एकदम खूब लग गए, भगवान के आते ही वन की शोभा ही दूसरी हो गई। अब देखो एक विशेष बात है, कई बार पाठ कर जाते हैं याद नहीं रहता है, ध्यान नहीं जाता है अपने लोगों का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देवताओं ने देखा कि भगवान का ज्यादा से ज्यादा सानिध्य कैसे मिले, देव शरीर से तो ज्यादा दिन नहीं रह सकते, तो कोई तो देवता है वो हिरण बनकर के आया, कोई पक्षी बनकर के आया, कोई भौरा बनकर के आया। मधुकर खग मृग तनुधारी देवा, माने भौरा बनकर के भगवान के जो फूल है वो गुनगुनाता रहे, भगवान को देख रहे, भगवान के वक्षस्थल पर माला यहाँ पर गूंज रहे, उसको बड़ा अच्छा लगता है। माला पर बैठ जाए तो देवता को लगता है हे भगवान के छाती पर बैठ गए। पक्षी है वो भगवान जिस वृक्ष पर बैठते हैं उसके ऊपर बैठ जाए, पास में बैठ जाए, इधर उधर बैठ जाए, भगवान को निहारते रहे। इनका कहा जाए कि भाई जिस समय में सीता जी थी तब तो तुम नहीं आए कि तब हमने देखा जयंत की दशा देखी ना, अरे कौवा बन करके गया था और क्या उसकी दशा हुई थी। इसलिए भगवान के तो हम लोग ऐसे ही जाए तो बड़ा ठीक रहे। मधुकर खग मृग तनुधरी देवा, करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। ऐसी राम जी की सेवा के अंदर सब लोग लगे हुए थे, एक शिला पर बैठ गए। और भगवान राम बरसात को देख करके लक्ष्मण को बोलते हैं, अब देखो बहुत विचित्र बातें बोलते हैं भगवान, सीता जी की याद में बोलते हैं। अब लोग देखेंगे कि देखो ऐसे आदमी तो संसार में बहुत से मिलेंगे, बहुत सी स्त्रियां मिलेंगी जो पति की याद में, अथवा बहुत से पुरुष ऐसे मिलेंगे जो स्त्री की याद में बड़े दुखी रहते हैं। तो राम जी भी ऐसे हुए तो राम जी में और में क्या अंतर हुआ? बड़ा अंतर है। क्या अंतर है वो आप स्वयं जो है सुनते हुए समझ लेंगे। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण, ये जो बरसात ऋतु है, काले काले मेघ आए हुए है, गर्जना कर रहे हैं, इनको देख करके मोर नाचता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वैराग्यवान गृहस्थी व्यक्ति किसी विष्णु भगत को देख करके प्रसन्न होता हो। वैराग्यवान गृहस्थी, गृही वीरत रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूं देख, जैसे एक वैराग्यवान गृहस्थी कोई भगवान विष्णु का भगत का दर्शन करता है तो कितना खुश होता है, ऐसे ये मोर है ये काली काली घटाएं देखकर ही नाच रहे हैं। पर मेरा मन डर रहा है, प्रिया ही नरपत मन मोरा, स्त्री से रहित मेरा मन डर रहा है। डर रहा का मतलब ये वर्षा ऋतु जहाँ सीता है वहां भी होगी और सीता मेरी याद में कितनी तड़प रही होगी। ये देखो ये अब बदल के अंदर जो बिजली चमकती है ये चमकती फिर बंद हो जाती, चमकती फिर बंद हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे खल के हृदय में प्रेम ठहरता नहीं है, दुष्ट व्यक्ति होता है उसमें प्रेम ठहरता नहीं है, अपना स्वार्थवाद हो जाए, पास से निकल जाएंगे तो यूं मुंह कर लेंगे जैसे भी पता ही नहीं, और नहीं तो गरज होती तो खूब मिलते हैं, खल के प्रीत जथा फिर नहीं। और ये बादल है जब बरसने लगते तो यूं जमीन पर यूं आते हैं, नजदीक आ जाते हैं, जैसे कोई विद्वान व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है, उसके पास जब विद्या आती है तो वो नम्र होता है, जिसमें जितने गुण आते हैं उसमें नम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसमें नम्रता है, सरलता है। तो जैसे भूमि के ऊपर बदल आते हैं, जैसे किसी भी बुद्ध व्यक्ति के पास में विद्या आ गई। और ये छोटी छोटी तलैया है, छोटी छोटी नदियां है, ये थोड़ी सी बरसात से ऐसी जो है भर भरा जाती है, जैसे थोड़े धन खल इतराई, जैसे थोड़े से पैसे से आदमी इतरा जाता है। शास्त्रों में उदाहरण आता है कि सांप होता है ना, वो यूं यूं जमीन पर चलता है, और बिच्छू के पास, सांप के पास ज्यादा जहर है कि बिच्छू के पास? तो सांप के पास ज्यादा जहर, तो वो यूं यूं चलता है। बिच्छू के पास थोड़ा सा जहर होता है तो यूं डंक ऊंचा करके चलता है, क्योंकि उसके उसको घमंड ज्यादा है, मेरे पास जहर है, मेरे पास जहर है। अरे तेरे पास जहर है तो सांप के पास तो कितना है, पर सांप यूं चलता है जमीन अंदर में, और बिच्छू यूं 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 चलता है। जस थोरे धन खले इतराई। और ये हरी हरी भूमि ऐसी हो गई है जैसे यहाँ कोई सद अच्छे अच्छे मार्ग है वो रुक गए, दिख गए, दिखते नहीं है, पगडंडिया वगैरह सब छिप गई, जैसे पाखंड के फैलने से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, चारों तरफ पाखंड ही पाखंड हो। अब बेचारा कोई बुद्धिमान व्यक्ति, सदग्रंथी व्यक्ति क्या बोले, उनके चुप रहता है वो। लोग कहते हैं क्या हुआ कि भाई कुछ नहीं हुआ। एक बाबा जी थे, उनके पास लोग जावे के बाबा जी क्या हुआ भाई, अभी हरदम राम 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 क्यों करते हो, क्या फायदा है, बकरी की तरह यूं करते रहो, क्या फायदा है? संतों ने कहा इसको क्या जवाब दे, संतों ने कहा क्या करो भाई, पागल हो गया मैं पागल हो गया, पिंड छूटा वो चला गया तो पागल है। हाँ ठीक है, मैं पागल हो गया। जे भी पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ। और नए नए वृक्ष, देखो बहुत बढ़िया बात आई, नए वृक्षों पर नए नए पत्ते आते, हरा भरा होता है। जैसे साधक सत्संग करता है उसको नई नई बात मिलती है तो उसके मन में, अरे आज ये बात नहीं मिली, आज ये बात नहीं मिली, आज ये बात नहीं मिली, कितनी खुशी आती है। साधक मन जस मिले विवेका, सत्संग में नई बात मिलने पर साधक बड़ा खुश होता है। पृथ्वी के ऊपर अन्न उगा हुआ ऐसा अच्छा लगता है जैसे किसी उपकारी व्यक्ति के पास पैसा आता हुआ अच्छा लगता है। पुराने जमाने में गांव के अंदर रहने वाले लोग वो देखते थे कि भाई हमारे सेठों का काम कैसा चलता है, वहाँ कोई देश दिशा से कोई आता कि हमारे गांव के सेठ वहाँ रहते हैं, वही कलकत्ते में के रहते हैं, उनका काम धंधा कैसे है, कि साहब बहुत अच्छा है, कि बहुत बढ़िया, बहुत क्यों, अरे जब से उनका काम धंधा चला ना, हमारे गांव के अंदर कुआं बना दिया, हमारे गांव में गवों की रक्षा हो गई, हमारे गांव में उन्होंने ये परोपकार का काम किया, परोपकार, सबके मन में भावना होती थी। तो उपकारी के संपत्ति जैसी, जैसे उपकारी व्यक्ति के पास संपत्ति की शोभा होती है, जो केवल भोगी विलासी होते हैं उनकी संपत्ति को देखकर दूसरे लोग चिढ़ते रहते हैं, देखा अपने धन को मिजाज करे, कोरो अकड़ाई में चले, घना पैसा हो गया नहीं, जना इतनी बातें करे, यूं कहे। और उपकारी की संपत्ति कितनी अच्छी लगती है, ऐसे पृथ्वी के ऊपर अन्न अच्छा लगता है। महावृष्टि जली फूटी कियारी, और खूब जो है बरसात होती है तो वो पानी का वेग इधर उधर, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, ऐसे पानी का वेग जैसे बिखरता है, इसी प्रकार से स्वतंत्र स्त्री भी जो उसका कोई मार्ग नहीं है, बिगड़े वो बिगड़ जाती है, ऐसे सारे मार्ग उसके भी मर्यादाएं सब टूट जाती है। ऊसर बरस ही तीर्ण नहीं जामा, जो ऊसर भूमि है उसके ऊपर खूब पानी बरसता है, लेकिन तिनका भी पैदा नहीं होता। जैसे जिमी हरि जन ही उपजन कामा, जैसे भक्त के हृदय में कभी कामना पैदा होती नहीं, संसार में कोई चीज की इच्छा ही नहीं होती। महाराज जी के पास एक बहुत पैसे वाला आदमी आया, बहुत पैसे वाला, बहुत पुरानी बात है। तो महाराज जी को कहा कि महाराज जी सत्संग में लगा हूं, कोई आपकी सेवा करना चाहता हूं, कोई चीज वस्तु भी हुई। महाराज जी ने देखा कि दी महाराज जी के स्वभाव में तो ना ही था कि नहीं लेंगे, ये सत्संग में नहीं आएगा, और लेने में तो क्या लेंगे, अच्छा विचार करके कहेंगे। तो एक बार हुआ, दो हुआ, दो तीन दिन बाद फिर महाराज को, अरे भाई मैं तो भूल गया। पांच सात दिन बाद फिर आया कि महाराज मैंने आपसे सेवा के लिए कहा था कि हाँ भाई भूल तो गया, अब बात याद रखने का विचार है। देखो तो फिर अपने पास में रहने वाले से पूछा कि भाई वो बार बार आता है, मेरा तो मन ना करने का ही होता है, पर ना करेंगे वो सत्संग में नहीं आएगा, वो नया नया लगा है। अब बताओ क्या कहूं मैं, क्या कोई चीज की कमी तो है ही नहीं हमारे, क्या कहूं तू बता। पास में रहने वालों का रामाधार जी को ही कहा कि तू बता काई लेवा। तो रामाधार जी ने बताया कि सुबह आप पढ़ते हो उस समय आपकी लाइट है, ये लाइट आपकी आंखों पर जोर पड़ता है, तो एक लैंप मंगा लो। उस समय आठाना का या रुपए वगैरह लैंप आता था। तो अच्छा हाँ ये बात तुमने, कठिनता तो होती है, कठिनता तो होती है और जो है आवश्यकता का भी, लेकिन अंदर पैदा ही नहीं हुई मैं क्या करूं। तब फिर वो आया, भगत आया, तो फिर कहा गया अभी रामाधार से पूछ लो। तो रामाधार जी से पूछा तो रामाधार ने कहा एक लैंप लिया, छोटो सो लैंप लिया, वो लैंप लिया। तो जिमी हरी भगत जिनी जिमी हरी जन ही उपजन कामा। जब भगवान का प्रेम हृदय में रहता कोई उनके इच्छा होती नहीं है। कबहु प्रबल बह मारुत, उस समय में इतनी जोर से बरसातें होती हैं, कभी तो इधर वायु आती है कभी उधर आती है, जैसे कपूत के उपजने पर कोई धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्यादा वायु के इधर उधर चलने से मेघ है वो नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्या है कि सूर्य दिखता है, कभी अंधकार आता है, कभी सूर्य कभी अंधकार, ऐसे कभी बदल आ गए, कभी छिप गए, कभी प्रकट हो गए। तो कबहु दिवस मह निवड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिन से ही उपजे ज्ञान निमी, पाई कुसंग सुसंग। जैसे अच्छा संग मिलते ही अपने अंदर ज्ञान पैदा होता है, और कोई खराब संग मिले तो ज्ञान ध्यान की बातें किधर जाती है, स्वार्थ की बातें छिड़ जाती है। ऐसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, कुसंग से ज्ञान की बात दब जाती है और अच्छे संग से ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे चातुर्मास में वर्षा ऋतु में कभी बदलों से सूर्य ढक जाता है, कभी दिख जाता है, कभी दिख जाता है। वर्षा ऋतु तो पूरी हुई, वर्षा ऋतु के बाद अब शरद ऋतु आई, माने श्रावण भादवा तो बीत गया, आसोस कार्तिक का महीना आया, शरद ऋतु आई, तो देख लक्ष्मण देख देख देख। अब देखो भगवान यदि सीता जी के वियोग में या आसक्ति में डूबे रहते तो ये ज्ञान की दूसरी बातें कैसे बोलते। हर चौपाई में ज्ञान है, हर चौपाई में। तो भगवान की तो ये केवल प्रेम की लीला है, लेकिन इस प्रेम लीला में भगवान कहीं पर भी अपना विवेक नहीं खोते हैं। देख लक्ष्मण ये शरद ऋतु आ गई, अगस्त का तारा उदित हो गया, सारा पृथ्वी का जल है वो सूखने लगा। कैसे? जिमी लोभई शोषई संतोषा, जैसे संतोष होता है वो लोभ को सोख लेता है। मन में यदि संतोष है फिर लोभ लालच पैदा नहीं हो सकता। जिमी लोभई शोषई संतोषा। और सरिता सर निर्मल जल सोहा, और नदियों का जल एकदम निर्मल। बरसात में तो देखो मिट्टी दिट्टी से गंदला हो जाता है, एकदम साफ, मिट्टी उट्टी सब नीचे बैठ जाती है। ऐसे जैसे संत हृदय जस गत मद मोहा, संत का हृदय होता है वैसे। धीरे 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 नदियों का पानी सूखता जाता है, जैसे ज्ञान होने पर ममता का त्याग होता है। ये पहचान है। अब कह साहब हम सत्संग करते हैं, सत्संग तो करते हैं परंतु भाई लोभ नहीं छोड़ते, स्वभाव नहीं बदलते, घर में लड़ाई झगड़ा वैसा ही चलता है। 24 तारीख को पैसा कौन देगा? ठीक है हाँ ठीक कन्फर्म हो जरा दे, न्याय है भाई, बहुत बुरी बात है। या तो सत्संग में आणो ही नहीं, अरे आओ तो व्यवहार शुद्ध, व्यवहार ही शुद्ध नहीं है। सेठ जी कहता कि थारो सत्संग है थारे व्यवहार रमायण दिखे, आपनो मुंडो कैसो हो के भाई, अब मारो मुंडो मन का ही दिखे, लेकिन का चाहे जना मारो मुंडो देखे, अरे मारो मुंडा में यूं है, मारा यूं हेड़ो, मारा अठे यूं आ लकीर लागोड़ी है, रठ यूं है, तो मैं मारो काच देख उंजना ठा पड़ी। ऐसे ही व्यवहार रमायण अपनी काई वृत्ति है, जना ठा पड़े कि आप कैसा का, यूं बात करने से कहीं में जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए। जल संकोच, अच्छा अब पानी धीरे धीरे कम होता है तो वो मछली बिचारी वहां तड़पती उलझी हुई, थोड़ा सा पानी मछली हुई उसमें कल बिलावे। जैसे कोई पैसा तो कम है और कुटुंब ज्यादा है और बुद्धि है नहीं, वो कुटुंबी लोग जैसे आपस में यूं बड़ी मुश्किल से यूं किल बिलाते रहते हैं, ऐसे पानी के अंदर मछली पड़ी रहती है, किल बिलाती रहती है। और कई अगाध जल होता है वहां पर मछली मस्त रहती है। जैसे भगवान की शरणागति स्वीकार करने के बाद एक भी बाधा नहीं होती। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, चकवा है उसके मन में शरद ऋतु में बड़ा दुख होता है चकवे को रात्रि के अंदर, क्योंकि रात्रि में चकवे को कुछ दिखता ही नहीं है। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमी दुर्जन पर संपत्ति देखी। जैसे दुष्ट आदमी दूसरे की उन्नति को देखकर जलता रहता है, उसके पास इतना धन क्यों हो गया, उसको इतना आराम कैसे मिल गया, बस ऐसे ही चकवा है वो रात्रि के अंदर बड़ा दुखी रहता है। दिन के अंदर जो गर्मी पड़ती है और रात्रि के अंदर जो गर्मी का हरण होता है, सरदा तप निसी शशि अपरई। शरद ऋतु में दिन में तो गर्मी रहती है आसूस काती में, और रात एकदम अच्छी सुहावनी ठंडी होती है, तो सरदा तप निसी शशि अपरई संत दरस जिमी पातक टरही। ऐसी शीतलता होती है जैसे संत दर से पाप दूर हो जाते हो। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाय। जिस प्रकार से भूमि के ऊपर बरसात ऋतु के अंदर खूब कीड़े मकोड़े छोटे छोटे और जीव जंतु कलबलाते रहते हैं, बड़ा देख देख करके पैर रखना पड़ता है, और वो शरद ऋतु में सब नष्ट हो जाते हैं। ये मशक दंश बीते हिमत्रासा, ये मक्खी मच्छर डांसरे ये सब उस समय में नष्ट हो जाते हैं। जैसे अच्छे श्रेष्ठ महात्मा के मिल जाने के बाद मनुष्य के हृदय से संशय भ्रम नष्ट हो जाया करते हैं, ऐसे नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मण देखो वर्षा भी ऋतु चली गई, अब शरद ऋतु आई है, लेकिन अभी तक सीता का कुछ पता नहीं चला। एक बार मुझे सीता का पता चल जाए ना तो मैं काल को भी जीत सकता हूँ, पर क्या करूँ अभी मुझे कुछ पता नहीं है। और तो और कतौ रहु जो जीवित होई, मुझे यदि ये मालूम हो कि वो जहाँ कहीं भी है जीवित है तो मैं उसको उठाने का लाने का पूरा प्रयत्न करूँ, लेकिन अभी तो कुछ पता ही नहीं है ना कहाँ है। हम तो वैसे के वैसे हैं जैसे पंचवटी में थे सीता की गुम, उसी हालत में आज अपन लोग बैठे हुए हैं। देखो सुग्रीव ने देखो हमारा काम भुला दिया, उसने हमारे कारण से राज्य प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, किष्किंधा प्राप्त करी, नारी प्राप्त करी, वही हमको भुला गया, उसको एक बाण से मार देंगे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती घबराना नहीं, जासु कृपा छूटई मद मोहा, ताकौ उमा के सपने कोहा। जिनकी कृपा से अनादि काल से जीव काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ है, उनकी कृपा से काम क्रोध लोभ सब नष्ट होता है। वे भगवान स्वयं कभी क्रोध करेंगे क्या? ये केवल लीला कर रहे हैं, लीला जानई यह चरित्र मुनि ज्ञानी। ऐसी ऐसी लीलाएं होती है ना, इन लीलाओं का रहस्य भगवान के भक्त लोग ही जानते हैं। हर आदमी इस विषय में प्रश्न करेगा, ऐसा है तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे भाई भगवान का भजन करो, भगवान के लीलाओं को सुनो, भगवान में प्रेम करो, तब तुम जानोगे। जाने यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। जिन्होंने भगवान के चरणों में खूब प्रेम किया है वे इस लीला के रहस्य को समझ सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैं जाता हूँ सुग्रीव के पास और मैं सुग्रीव को मारता हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जाओ लक्ष्मण उसको भय दिखाओ, मारना नहीं। क्यों? क्यों उसको मैंने स्वीकार कर लिया है। तात सखा सुग्रीव, मैंने उसको अपना मित्र माना है, उसने तो मुझे अपना स्वामी माना है, लेकिन मैं उसको अपना मित्र मानता हूँ। अतएव उस सुग्रीव को मारना नहीं, भय देखा करके तुम ले आओ। तो लक्ष्मण जी महाराज अब किष्कंधा की तरफ पधारते हैं। भगवान के इतने जो ये संवाद हुए ना, इन संवाद के अंतर्गत लक्ष्मण जी के बहाने से दुनिया को भगवान उपदेश दे रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने ये जो आधी चौपाई में तो प्रकृति का वर्णन और आधी चौपाई में सत्संग की बात ये भागवत से ली है। भागवत के दशम स्कंद में ऐसी बातें आती हैं, वो आधा श्लोक तो और है, आधा श्लोक और ही गोस्वामी जी महाराज ने ये पद्धति वहां से ली है और भगवान के मुख से ये बात कहलवाई है। तो ये बताना चाहते हैं कि भगवान निर्लेप और भगवान अपने आप में अपने स्वरूप में स्थित है, केवल रोने की लीला करते हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की जय अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की जय भक्तवत्सल भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय।